તારીખ 17/7/1993 શ્રી સમયસર કળશ શ્લોક નંબર 142 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 74 એ
लकड़े छाने का, इसमें अग्नि जले, बीच में वो खड़ा रह जाए, चाहे कोई विशेष की जगह हो, और खड़े खड़े 11 बजे से शाम को 5 बजे तक 6-6 घंटा खड़ा रह जाए, कभी शीर्षासन भी करे, कभी एक पगे खड़ा रह जाए, दो पगे में भी खड़ा रहे, कभी पद्मासन में रहे, अनेक प्रकार के आसन करते हैं और एक आसन में भी रहे। इतनी गर्मी सूर्य की हो, पूरा दिन का मस्जिद में जितने भी घंटे हैं 5-6 घंटे सारा मन लगा कर तपस्या करते हैं, जिना किया बिना अन्य बती ईश्वर की मोक्ष मार्ग में क्या आ गया है वो जानते नहीं, सुनते नहीं, दरकार करते नहीं, अपने स्मशन से मोक्ष हो जाएगा, ऐसे तप तपस्या करते करते मोक्ष हो जाएगा ऐसा मान करके कुछ करते हैं, तो करो क्या उसको होगा, क्लेश की प्राप्ति होगी, कार्य काया कष्ट करके कार्य कष्टि से उनको सिर्फ क्लेश की प्राप्ति होगी, आत्मा का आनंद और शांति होगी नहीं। एक तो कोई ऐसे भी जीव है होते हैं जगत में, दूसरे परे में दूसरे कोई ऐसे भी जीव है जो मोक्ष के सम्मुख अर्थात किंचित जिना ज्ञापा कहे हुए महाव्रत और तप के भाग से बहुत काल पर्यंत मग्न होता हुआ मैंने टूटी भरता थका, मैंने बहुत कार्य से शरीर दुर्बल हो जाए, तपस्या उतनी करे, खाना पीना बंद कर दे, महाव्रत का पालन करे, का पालन करे, जैसा बिना रूप में कहा है बिल्कुल निर्विचार वैसा, तो उसको जिना का संकुख मोक्ष संकुख कहा है, कहेंगे तो उसका भी मोक्ष नहीं होता। क्लेश प्राप्त करो तो करो करो, उसको भी क्लेश ही मिलेगा, उनको भी आपको शांति नहीं होगी।
तो पसंद की जिना में मानते हैं तो आधी शांति तो मिलनी चाहिए,
कथनचित मैंने जैसा बिना गुरु ने कहा है वैसा, कथनचित मैंने यथार्थ ने शुद्धोपयोग सहित ने शुद्ध स्वरूप का अवलंबन सहित ने शुद्धोपयोग नहीं होते हुए भी शुद्ध स्वरूप का अवलंबन नहीं होते हुए भी जैसा जिनेन्द्र देव ने आरंभ में कहा है वैसा ही करेगा, इसके बाद में जाएगा, इसलिए क्लेश को प्राप्त करता है, अगर शुद्धोपयोग होता तो शांति को प्राप्त करता है। तो वो भी बहुत काल परि का पालन करे, तपस्या धारण करे, तो भी वो भी मोक्ष को क्लेश को प्राप्त करता है,
कथनचित
मैंने जीना ज्ञान था जिनागम के अनुसार दो प्रकार के भेद लिए, एक तो जिनागम पढ़ते हैं, जिनागना क्या है वो जानते हैं, अपने स्वच्छंद से अपने संप्रदाय में जैसा कहा है वैसा करता है, या अपने गुरु ने जैसा कहा है वैसा करता है, और एक जिन मार्ग में है, जैन है, जैन साधु है, और जैसा जिनागम में महाव्रत और तप का जैसा भी विधान है उसको अनुसरण, तो कथन चित कहते हैं उसको, लेकिन उसमें शुद्ध स्वरूप का अवलंबन किंचित भी नहीं है, क्योंकि वो भी क्लेश को प्राप्त करता है। किस प्रकार का क्लेश है वो, कि वो शुभ उपयोग रूप है, शुभ उपयोग रूप है, तो शुभ उपयोग में भी आप उनका हवा
क्या मोक्षार्थ सन्मुख सन्मुख व्यवस्थित होकर
वास्तविक मोक्ष मार्ग में है उनका महाव्रत और तप ऐसा ही था क्या? जो वास्तविक मोक्ष मार्ग में है उसका भी महाव्रत और तप ऐसा ही होता है। इसलिए अगर मोक्ष के सन्मुख हो तो वो क्लेश को क्यों प्राप्त
कर? सम्यक तो सन्मुख वाला जीव तो सम्यक पानी जाए,
जाए।
मोक्ष सन्मुख के दो
तो कहेंगे कि वो मोक्ष को नहीं प्राप्त करता,
नहीं प्राप्त
क्या कहते प्राप्त को नहीं समझते। उनके लिए क्या कहा आखिरी पर देखो, देवो वे प्राप्त नहीं कर सकते,
नहीं सकता नहीं।
प्राप्त कर सकते ही नहीं ऐसा कहा है। क्या ही लगाया है? नहीं, उत्तर में भी ही लगाया है, इधर प्राप्त नहीं होता है। तो प्राप्त कभी करेगा ही नहीं, क्यों? भीतर में जो मोक्ष मार्ग है वो नहीं, बाहर में जो व्यवहार है वो इसका व्यवहार बिल्कुल सही है। बिना ज्ञान के अनुकूल व्यवहार है, बिना रूप के अनुकूल व्यवहार है। व्यवहार तो बराबर है, व्यवहार बराबर होते हुए भी व्यवहार से निश्चय होता। यहां से तो बोलते निकालते हैं कि व्यवहार से निश्चय नहीं होता, व्यवहार बिना ज्ञान के अनुकूल है। जैसा बिना ज्ञान है वैसा नीर विचार पा रहे, कोई दोष नहीं लगे, अतिचार दोष भी नहीं लगे, अनाचार दोष का तो सवाल ही नहीं फिर आगे का, अतिचार भी दोष नहीं लगे। ऐसा कठिन क्रिया में बिल्कुल सावधान कोई काम की बात नहीं, सरासर निष्फल जाएगा ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो वे कहते हैं कि ज्ञान ही साधन है, क्या कहना है जो मुद्दा उठाया है 201 से वो उठाया है कि तुम ब्रह्म से भी जिनागम पढ़ करके भी जैसा जिनागम में कहा है ऐसी क्रिया में करेगा, लेकिन न्यास को दूसरा करने बनाएगा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होने वाली। ये मुद्दा जो पॉइंट है वो उतना ही, दोनों को ले लिया कि अन्य मत वाले तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिन मत वाले तो दिनाग्रह अनुसार करे तो उसको तो कठिन से कठिन क्रिया करे तो कुछ क्रिया मार बताने का वो तो लाभ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं।
मोक्ष भी सर्वोक्त प्रति लाभ देते हैं,
तो कांस में लिया है
और करश्मा ही नहीं,
इसका भी अर्थ किया है। तो इसका अर्थ इतनी मर्यादा लेना कि जिन आज्ञा अनुसार जिन आज्ञा जिना जब में कहा है ठीक वैसा का वैसा चुस्त रूप से व्यवहार को पालन करता है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग में जो भावजी के समझे वो ऐसे ही करते हैं, तो दोनों का एक साधन होता है। इसलिए मोक्ष सन्मुख ऐसा कह देते हैं, वास्तव में वो मोक्ष सन्मुख है ही नहीं, उतना ही अभिप्राय है कि जैसा आनंद में कहा पालन करता है अपना स्वच्छंद से, दूसरा नहीं करता, इतना स्वच्छंद उसको नहीं है कि जिना के केवल ऐसा था मुझे तो ऐसा कर, ऐसा नहीं है। गुरु आज्ञा जिना आज्ञा बराबर पालन करने वाला जीव है, फिर भी रास्ता पर नहीं, कहना तो वो है कि फिर भी रास्ता पर मार्ग पर है, सन्मार्ग पर
रास्ते पर नहीं, दिशा उल्टी है, दिशा उल्टी है उसकी।
हाँ, उनकी दिशा सुभोग योग है, उसकी दिशा बदली नहीं, सुभोग योग अच्छा है, विकट के सागर की स्थिति में जाएगा, नो मिग्रे मोक्ष मार्ग में आने वाला। ट्रांसलेशन का कोई रिवाज साहित्य में नहीं हो गया ऐसा दिखता है। और जो साहित्य की शुद्धि लोग पढ़े लिखे हैं और अनुवाद के भी कुछ नियम होते हैं, अनुवाद के हैं तो बात रेगुलर ट्रांसलेशन, फिर उसमें कोई अपने को विशेष बात लगे तो ब्रैकेट में बता सकते हैं या फुट नोट में बता सकते हैं। तो अभी तो जो विशेषता होती है कि मूल जो है वो इतनी बात है, हमको जो विशेष लगती है उस पर से जो हमारा अभिप्राय है वो तो ब्रैकेट में दिया है या फुट नोट में दिया है। तो क्या है कि इस विषय के कोई विशेषज्ञ होते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो विद्वान है उसने अपना अभिप्राय अपनी मर्यादा में किस हद तक व्यक्त किया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इससे अधिक भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो जो जो विषय के जो तजज्ञ होते हैं उनको खुली रहती है बात, अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रैकेट रखा ही महाव्रत तपो भारेण उसका अर्थ किया है। तो महाव्रत तो बिना करते ही होते हैं पंच महाव्रत, ऐसे पंच महाव्रत और तप जो करते हैं और लंबे काल तक करते हैं और करते करते मर जाते हो तो भी उसका मोक्ष होने वाला, वो तो क्लेश को प्राप्त करे तो फल, परंतु जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, क्या मोक्ष सर्वोक नहीं किया है क्या साक्षात मोक्ष ऐसा शब्द दिया है श्रीमद जी ने सत्पुरुष के लिए, सत्पुरुष के लिए ऐसा लिखा है सत्पुरुष साक्षात मोक्ष है, मोक्ष स्वरूप है। बात जो चली है परोक्ष प्रत्यक्ष के विषय में चली, मोक्ष साक्षात मोक्ष होता है कल्याणकारक है, उसका गुणानुवाद है महावीर भगवान ऐसे होंगे, कुंकुंदाचार्य ऐसे होंगे, शुभद्राचार्य ऐसे होंगे, अमृतचंद्राचार्य ऐसे होंगे, तो उसका गुणानुवाद करना चिंतन करना कल्याणकारक है। तथापि स्वरूप स्थिति का कारण बन सकता ऐसा चिंतन करते करते कोई शुद्ध योग में आ जाए, मोक्ष मार्ग में आ जाए, अनेक दर्शन प्राप्त करे, ऐसा बनेगा नहीं, क्योंकि कारण दिया जीव को क्या करना चाहिए वह ऐसा स्मरण से समझ में नहीं आता। ऐसे स्मरण करने से अभी क्या उसे करना चाहिए वो समझ में, अभी अंतर्मुख कैसे होना वो समझ में नहीं आएगा। पुराण बात कितना भी करेंगे तो बहुत योग हो गया करेंगे, प्रत्यक्ष योग से बिना समझाए भी। देखिए क्या प्रत्यक्ष योग का कैसा प्रभाव है, प्रत्यक्ष योग से बिना समझाए भी स्वरूप स्थिति होना संभवित मानते हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि अगर प्रत्यक्ष योग मिला तो नहीं समझाए मौन रहे तो उस मौन पर फिर भी निमित्त निमित्त संबंध से इधर स्वरूप स्थिति में शुद्धों की योग संभवित होना मानते हैं। और इससे ऐसा निश्चय होता है कि इस योग का मैंने प्रत्यक्ष योग का और प्रत्यक्ष चिंतन चिंतन का फल मोक्ष है। देखिए आगे जाते हैं, इसका फल मोक्ष है क्योंकि कारण की धारणीय है कि मूर्तिमान मोक्ष वाला सत्पुरुष है। सत्पुरुष क्या है? मूर्तिमान मोक्ष है। मोक्ष तो अरूपी आत्मा के अरूपी परिणाम है, लेकिन सत्पुरुष तो मूर्तिमान मोक्ष है। ये बात क्या है? अपने काल में संक्रमण काल में कुंडाचार्य थे, बहुत कड़ा निषेध किया काम करना। उसमें भावलिंगी मुनि है वो मूर्तिमंत मोक्ष मार्ग है, ऐसा लिखा है। मोक्ष मार्ग तो अरूपी है, मोक्ष भी अरूपी है, लेकिन ये जो व्यक्ति जो है वो तो मूर्तिमंत मोक्ष मार्ग और मूर्तिमंत मोक्ष भी है, ऐसा लिखा है। बहुत जोर से प्रतिपादन किया है।
मूर्तिमान जो मोक्ष स्वरूप है सत्पुरुष, उसमें केवल तेरे संतान वाला नहीं लेना।
सदैव मूर्ति तीन है, सदैव मूर्ति सर्वज्ञ देव है, निर्गुण गुरु है और सत्पुरुष आत्मसत्पुरुष है। तीन सदैव क्यों ऐसा? क्यों प्रश्न तो बराबर चुका ऐसा क्यों? चतुर्थ स्थान जगन्य मोक्ष मार्ग में है और ये तो राजमार्ग पर है। उन्हीं राज पर जिन लिंग है उनको लिंग है वो लिंग है तो कुछ कहने का सवाल नहीं, वहां तो तर्क का भी अवकाश नहीं है। वहां तो जो तर्क होता है वो सत्पुरुष के लिए गृहस्थ के लिए होता है। तो उसका ये कारण है कि जो तर्क है उसको उनके उपाधान में है। इसके अंदर में तीनों के उपादान में फर्क है, लेकिन तीनों में जो निमित्त है उसमें फर्क नहीं है। और तेरा सबंध तो उनका निमित्त के साथ है, उनका उपादान के साथ तो उनको सबंध है, तेरे तेरा सबंध कोई नहीं है। तो निमित्त तो तीनों में एक सरिता है, कितना है ज्यादा कम नहीं है उसमें। जिस निमित्त से दूसरा जीव को तैरने का नैमित्तिक संबंध बनता है तो तीनों में एक साथ
सर्वज्ञ में विचरण नहीं होता है। सर्वज्ञ में विचरण नहीं होता है,
नहीं निमित्त को सर्वता होता है। जैसे कोई संसार में डूबता है तो यहाँ से दूध गिरता है, यहाँ से दूध गिरता है, यहाँ से दूध गिरता है। जैसे कोई समुद्र में डूबता है उनको स्टीमर मिल जाए तो बच जाएगा, और इनको कोई छोटी हुड़ी मिल जाए तो बच जाएगा, और इनको कोई बड़ा वृक्ष का लकड़ा मिल जाएगा तो उसमें आधा बचेगा क्या? लकड़ा मिला इसलिए पूरा नहीं बचा, उसके बाद मिले तो पूरा बचेगा, ऐसा होता है। बचने वाले को तो पूरा बचने का होता है, चाहे कुछ भी तीन में से एक मिले। अब दो नहीं मिला क्योंकि अभी दो नहीं दिखता है, उनको लकड़ा नहीं चाहिए, हम तो स्टीमर आएंगे तो बैठेंगे, अरे मर जाएगा तू। ऐसा अगर तू पसंद करने में ऐसे दूर करेगा कि नहीं हमको तो स्टीमर चाहिए या हमको तो होड़ी मिल तो बैठे लकड़ा वकड़ा को, अरे तू डूबता है तो तू तिनका को भी पकड़ेगा। अगर तुझे भान है कि मैं डूबता हूं तो अब तुझे यही पता नहीं है कि मैं डूबता हूं कि नहीं डूबता हूं, तो फिर तुझे अपने गुजराती में होंगे थोड़े टाइना करे भूख नहीं हुए तो थोड़ी रोटी ऐसा क्यों बोले थोड़ी थोड़ी कच्ची है, अरे थोड़ी ज्यादा जल रही है, ऐसा तो भूख नहीं है। क्या करता है भूख हुए तो खाने लगेगा लगेगा और लगेगा देखेगा नहीं कैसे बनी तो ऐसी बनी है ऐसी बनी है, इधर देखते हैं उधर देखते हैं आगे देखते हैं पीछे देखते हैं, इसका मतलब क्या कि तुझे भूख लगी? ऐसे जो डूबता है जिसको मृत्यु में डर आती है, क्या मृत्यु के दरवाजे पर जो खड़ा है वो बचने के लिए टाइला करने वाला वो तो कैसे बचा जाता है, उसको पकड़ेगा। तो अभी तो दो तो है, सर्वज्ञ का तो काली चला गया, चतुर्थ सारा पूरा हुआ, सर्वज्ञ के काल निकल गया। करीब 600-700 साल से उन्होंने भाव दिए, अभी तो ब्रह्म लिंग भी कोई नहीं। अब जो कोई होते हैं सत्पुरुष, तो सत्पुरुष को अगर स्वीकार करने का निमित्त रूप से भी स्वीकार करने का जिसको बुद्धि नहीं है, उनके लिए कोई उपाय, उसको परिभ्रमण करना ही है, डूबना ही है, मरना ही, उनको खुद नहीं जा रहा। ऐसी बात क्यों कि सर्वज्ञ तो बहुत लक्ष्य होते हैं, इनकी संख्या कितनी और इनके काल कितना, अभी तो काल ही नहीं है लेकिन काल हो गए चतुर्थारों तो सर्वज्ञ कितने होंगे, और होंगे तो भी जो तीर्थन करेंगे तो 24 होंगे, और जो मुख केवली है तो नहीं भी बोलेगा, तेरी उलझन है, तेरी मुनिवर है, तेरी समस्या का समाधान जंगल में उनका भी वो भी कम होंगे, वो भी सुनिए कृष्ण जितने मुनि हो नहीं होते, उनकी संख्या भी सुनिए कृष्ण से तो कम रहती है, फिर इसके लिए जंगल में जाना पड़ता है, अपना कारोबार धंधा व्यापार छोड़ करके वो कोई रास्ता पर मेन रोड पर नहीं बैठते कि ऐसे जंगल में जाए तो भी मिल जाए, उधर तो गिरी कतरा में जाना पड़ेगा, नहीं कोई पर्वत में कोई मुखार में कोई जमीन कोई जमीन कितना पड़ेगा, वो भी मिले तो मिले नहीं भी मिले, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं तो कहाँ रहते, इनका कोई ठिकाना नहीं कि मेरा आश्रम में वहां तो मैं मिलूंगा, मेरा एड्रेस है, इनका कोई एड्रेस नहीं, वो कब कहाँ चले जाए कब कहाँ चले जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, उनके बेगुना भी इसलिए उन्होंने ये कहा सत्पुरुष इतने तो अच्छे हैं कि कोई ठिकाने पर तो रहते हैं। और बहुत सरल होते हैं, निराश उपदेश देने के लिए बंदे हुए नहीं है, कोई राजा महाराजा से क्या चले जाए जंगल में, जंगल में जाए हाँ कुछ उपदेश के लिए जाए, तब बात बोलेगा नहीं तब बंदे हुए नहीं, कोई भी आ जाए हमें क्या, नहीं भी उद्देश्य ही नहीं, प्रश्न पूछा तो उत्तर नहीं भी दे, उनकी मित्रता इतनी बड़ी होती है, सब कुछ में करुणा ज्यादा होती है, कोई खुद का मिराज है तो उनको मिराज में ज्यादा होता है, कोई भी समस्या है तो समझा देता है, तो हाँ उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच दिया है कि अरे परमात्मा तेरे से तो ये सत्पुरुष सरल है, क्या बोले परमात्मा को तो सुनने वाले नहीं किसी के, लेकिन वो अपने भाव प्रदर्शित करते हैं, तो क्या कहूं मैं परमात्मा तेरे से तो ये सत्पुरुष सरल है, और इनकी दृष्टि के कब्जे में पूरा परमात्मा है, तीन लोग का नाश तो बस कर दिया है, फिर भी उन्मत नहीं हुए हैं, क्या उनको पैसा नहीं होता, पैसा आ जाता है तो दिखाव बढ़ जाता है, अशब्द का चित्र हो जाता है, मर जाता है, क्या अनुग्रह करने से मर जाता है, ये तो ऐसा इतने गंभीर है और ऐसी अटपटी दशा से वर्तते हैं कि दूसरे को पता ही नहीं लगे कि इनके पास संपत्ति कितनी है, इन लोग की नाक की संपत्ति इनके कब्जे में है, क्योंकि दिखा नहीं सकते, उसका गर्व नहीं, गौरव नहीं, अभिमान नहीं, और ऐसे वर्तन करते हैं कि दूसरों से पता ही नहीं, कि मेरे पास क्या है, इतना गंभीर है, इतने सरल है, फिर भी मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, तो हम इनकी कुछ ज्यादा भक्ति कर लेना, कर लेना तो तुम बुरा आनंद लगाना, भगवान का ऐसा बन देना, भगवान को सर्वज्ञ जो को ऐसा बोला है, कहते कि तेरे से मैं इनकी ज्यादा भक्ति करो ना तो तुम बुरा मन लगाना, क्योंकि तेरी भक्ति करने वाले बहुत है। सुबह से ही लग जाते मंदिर में आते लोग, तो तेरी भक्ति करने वाले बहुत है, कोई मेरा जैसा कोई एक कम हो जाएगा तो तुम्हें
क्या नुकसान होता है? हमारा तो नुकसान भी नहीं, ज्यादा आया तो भी नुकसान नहीं, ज्यादा आया तो भी नुकसान नहीं है मंदिर में भगवान के साथ।
भगवान के सामने कितने बैठे, वो तो मित्र आ गए सामने देखेंगे, वो तो पूजा करने के वाले के सामने, जब गालियां देने वाले के सामने देखते हैं, पूजा करने वाले के सामने देखते हैं, उनको तो अपना आदमी देखना है, दूसरा दिखना ही नहीं है। तुम करो तो करो, नहीं करो तो तुम जानो, हमें क्या लेना देना, हम तो विराग है। तो इनकी संख्या उन्हीं और सड़क में से अधिक होती है, तो शहर में गांव में भी मिलते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसे अपने मतलब की बात कोई नहीं समझे तो उसको क्या कहे, किसी की मर्ता पर हम क्या कहे, अगर वो इतनी अपनी मतलब की बात नहीं समझे तो क्या उसके लिए क्या कहे, तो उसको मिलते हैं ज्यादा पैमाने में मिलते हैं, प्रमाणीकरण संख्याएं कम है, तुझे बचना है तो मोक्ष मार्ग में आ जा, नहीं बचना है तो तुम जान।
भावलिंगी करता समी की जाजा भावलिंगी करता समी चला 500-600 वर्षों में तो 25 वगैरह દેખાતા રહે આપણે
ભાવલિંગી તો એક નહીં કે
ના ભાઈ પેલા જે અર્થે ત્યાં તો ઘણા જ હશે ને
સમોસરણ મેં સબસે કમ કેવલી હોતે ઇસે જ્યાદા મુનિ હોતે ઇસે જ્યાદા પુણે કરતે હોતે ઇસે જ્યાદા શિક્ષા રખતે હોતે એસા હોતા હૈ સંખ્યા મેં સંસાર મેં ભી ક્યા सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि, फिर कम समय दृष्टि, फिर कम इससे गुणी, फिर इससे कम, सारे संसार में सारा मनुष्य लोग ले लो, अरे तीन लोग ले लो तो भी, क्योंकि मनुष्य के अलावा तो गुणी होते ही नहीं, देवनाटी में तो गुणी होते नहीं, किरण में गुणी होते नहीं, तो सारा पूरा संसार ले लो, पूरा ब्रह्मांड ले लो तो भी इसमें सबसे ज्यादा संख्या मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी असंख्य है और
मुनि थवाना छे
तो वर्तमान की बात है, वर्तमान युगानुयोग प्रत्यक्ष योग किसका अवेलेबल है, तो डूबने वाला ये कहे कि नहीं हमको तो लकड़ा नहीं चाहिए, तो बच जाता, अभी तो लकड़े के सिवा मिलने वाला है, अभी तो स्टीमर मिलने वाली है, मार्ग मिलने वाला है, क्या करें, इसलिए कहते हैं। तो ये तो निमित्तत्व को समझते हैं जिसको निमित्त को भी समझ में नहीं आता, उसको उपादान की बात कोई समझ में आती है वो तो विचार करने लायक भी नहीं, क्या, क्योंकि निमित्त का विषय हमेशा स्थूल रहता है, उपादान का विषय सूक्ष्म रहता है, तो जिसको निमित्त का भान नहीं उसको उपादान का भान कैसे होगा, बातें करेगा मिलने वाला साक्षात मोक्ष से बात, साक्षात मोक्ष स्वरूप ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं देखा, साक्षात मोक्ष स्वरूप ऐसा कहा, क्यों कि तुझे सर्वज्ञ चाहिए तो तेरे लिए तो अभी वो सर्वज्ञ है, समझ ले, क्योंकि तेरे मुझसे ऐसे साक्षात मोक्ष स्वरूप है, जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, निरामय पद है, मैंने जिसमें कोई क्लेश नहीं होता, रागा नहीं होता, रोग नहीं होता, और स्वयं संवेद्यमान है। कैसा है ज्ञान? कैसा है विज्ञान की बात होती है कि ज्ञान तो साक्षात मोक्ष स्वरूप ही है, क्योंकि उसमें कोई दोष का प्रतिबंध ज्ञान में नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ज्ञान विशेष के साथ है। जो स्वसंवेद्यमान ज्ञान सामान्य है उसमें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो अविकृत रहता है, उसमें तो विकृति भी नहीं आती, हाँ विकृत रहता है, ठीक रहता है, वो स्वभाव रूप है। इसलिए जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है तो कहते हैं कि तेरा ज्ञान ही साक्षात मोक्ष स्वरूप है। इसलिए 17-18 में कहा कि ये भगवान आत्मा है, अनुभूति स्वरूप है, वो भगवान आत्मा है। साक्षात मोक्ष स्वरूप हो तो भगवान को भगवान मोक्ष स्वरूप होते हैं, तो ज्ञान को ही यह भगवान कह दिया है। जो ज्ञान जो मैंने जो ज्ञान साक्षात मोक्ष स्वरूप है, जो निरामय मैंने रोगादि समस्त क्लेश बिना का पद है, उसमें कोई क्लेश का अंश भी नहीं होता, और वो स्वयं संवेद्यमान है, जो अपने आप वेदा जाता है। बस यहां चोट लगनी चाहिए, क्या मेरा ज्ञान स्वयं संवेद्यमान है, स्वयं ही वेदन में आता है? बस जहां तक वेदन में ना आए उतनी जिज्ञासा से भीतर में खोलता है। क्या करें कि जहां तक अपना वेदन पकड़ में नहीं आवे, है तो सही पकड़ में नहीं मान तो खोल चालू करें, अपूर्व जिज्ञासा। ये हमारा 10 लाख का हीरा नहीं खोया, ये करोड़ों अरबों का हीरा नहीं खोया, इससे भी जिसकी ज्यादा कीमत है उसकी खोज करना है कि जो खो गया है। खो गया मतलब क्या है कि नाश नहीं हुआ है, लेकिन चिंता नहीं है। तो ऐसा कोई पूरी संपत्ति डूबती है तो आदमी को हार्ट अटैक आता है, कितना ताजा भी हार्ट अटैक आता है। ये तो पूरा परमात्मा है, ये तो संवेद्यमान ज्ञान तो परमात्मा ही है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही है, वो खो गया है। तो इसकी खोज के लिए कितनी चिंता होनी चाहिए, एक दफे तो सारा संसार को भूल जाए, स्मरण कर दे, जहां तक नहीं मिले वहां तक इसके पीछे ऐसा लगे ऐसा लगे, बस ये पीछे लगने की खोज है, यही कारण है। और संवेद्यमान का संवेदन का पकड़ना ही उसका कार्य है, कारण कार्य उतना ही है, इससे ज्यादा कारण भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कारण में उपस्थित होता है जीव के परिणाम में, खोज का मरते अंतर खोल होता उसका पता भी पर वो खोज नहीं होती, इसका कारण हम इसको थोड़ा देखते कि उतनी दरकार में नहीं है, हम दरकार बिना के तो है ही नहीं, लेकिन कहीं और जगह हमारी दरकार भी चल रही है। ऐसी बात तो जो सर्वोत्कृष्ट पद है उसकी दरकार नहीं करें, और जिसकी दरकार करते हैं वो बिल्कुल निकम्मे पदार्थ हैं, कहते हैं कोई काम में आने वाले नहीं, जो सुख देते नहीं, इसका लक्ष्य से तो दुख होता है, इसके दुखदायक कहने में आते हैं, लेकिन ना दुख का देने वाला ना सुख का देने वाला है, इसके पीछे लगे हैं, इसकी महत्ता है। मेरे हमको उज्जवल परमाणु की महत्ता है, राग की महत्ता है, तो विचार मानो क्या कर लेते हैं, पास छोड़ देते हैं, संकट में बैठ जाते हैं, निवृत्ति क्षेत्र में चले जाते हैं, प्रतीक्षा लेते हैं, तो उनके लिए कहेंगे कि उनको क्या परमाणु की साधना दी है, उनको तो संपत्ति भी छोड़ दिया है, तो उनको रक्त की साधना दी है, या तो राग की दरकार है या तो राग के विषय की दरकार, ये नाम उस पर सारा राग की दरकार वाला दिया है, नारस वाला इतना नारस पालता नहीं, लेकिन इसकी दरकार तुम करते हो, अपने परमात्मा की ज्ञान पद की दरकार नहीं करते हो, तो निरामय पद विद्यमान है, तो फिर वो चीज मिलने वाली नहीं, टिकने वाली नहीं है, और होते हुए भी टिकने वाली नहीं, और स्वयं का वेदन, स्वयं को स्वयं का वेदन यही दिशा बदलने का पहला कोई भी टर्निंग पॉइंट है तो वेदन है क्या, इधर से इधर टर्न लेना है, दिशा तो दो ही है, तीसरी दिशा है नहीं, इधर परिणाम को तो दो ही दिशा है, एक प्रसन्न होता एक प्रसन्न, प्रसन्न होता आदि से चलते कहां तक समाप्त करे तो भी पूजा भक्ति करे तो भी संस्कार संपादा कार्य करे तो भी, तो शुभ और शुभ में कोई विशेषता है ही नहीं, वो तो विशेष रूप से देखने का है, प्रश्न साधन हो चला चलते थे कि जो शुभ और अविशेष को अविशेष रूप से नहीं देखेगा ये चिरकाल तक घोर संसार में भटकेगा, तो प्रश्न तो वो तो सब एक दिशा में है, इसलिए क्योंकि दोनों की दिशा एक है, शुभ की और शुभ शुभ को चार प्रमुख के पर्याय है, अब ज्ञान में आए कि ज्ञान का उपयोग की दिशा में अगर नहीं हो प्रश्न हो तो राग का जैसा परिणाम सुबह सुबह वही ज्ञान की हालत होगी, ज्ञान तो साधन है, राग तो साधन है ही नहीं, लेकिन ज्ञान तो साधन है, लेकिन उसमें भी प्रश्नमुख का साधन नहीं, ज्ञानी का तो प्रश्नमुख ज्ञान साधन नहीं, ज्ञानी भी प्रसन्नता अवलंबन से ज्ञान को मोक्ष मार्ग भी कहते आता है से बोलने से भी ज्ञानी भी नहीं कहेंगे तो अपना प्रश्न जो है वो मोक्ष कारक नहीं है, वो बद्ध कारक है, तो उसका तो पूरा निषेध है, एक अंश में भी इसका स्वीकार नहीं है, चाहे वो प्रश्न उपयोग शास्त्र ज्ञान का हो, चाहे प्रश्न उपयोग में भगवान के सर्व देते होंगे साक्षात चिंतन करते रहना वो साधन, वो ज्ञान ही नहीं है, वो उज्जवल है, क्या है वो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान के पर्याय नहीं कहते गुरुदेव, गुरुदेव नहीं कहते थे ऐसी बात है, गुरुदेव उसको ज्ञान नहीं बोलते, ज्ञान कहां का, जो ज्ञान पर के साथ संबंध रखता है, जड़ के साथ संबंध रखता है, ऐसा संबंध रखने वाले से हम क्या प्रेम करें, कैसे प्रेम करें, इष्ट कैसे माने, नुकसान करने वाला ऐसा विचारी भाव को हो, अनिष्ट कहो, दुष्ट कहो, घातक कहो, जो भी कड़ा से कड़ा शब्द कहो, मिया के नहीं मिला राज में भी नहीं है, इष्ट अनिष्ट है, दुष्ट है, घातक है, 108 शब्द दिया, स्वशब्द भी मान है, ज्ञान से ज्ञान का वेदन है, स्वभाव को देखने से दिशा बदलना होता है और दिशा जिसकी बदली दशा इसकी बदल जाएगी, जिसकी दिशा बदली उसकी दशा भी बदलेगी। बुद्ध एलिग्रेशन देते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी एलिग्रेशन कभी कभी बहुत ले रहे हैं। ध्रुव नाम का जी बताती है तेर दशा कहते थे, हम जो बता रहे थे राधा जी वहां ठहरे थे, प्रवचन का मौका नहीं रहा, तो अपना भोजन चलता था उसके बेडरूम में जाते हैं, तो वो बोला क्या इधर ये निकला है हमारा वो चलता है, ध्रुव धाम के थे ध्वनि लगते ध्वनि लगाते हैं ऐसा करके तरह तरह धर्मी के धन्य ऐसे धर्मी धन्य है फिर धन जाते ये जो है उस संवेदन है तो दिशा बदलता है, यहाँ से दशा भी बदल जाती है। वेद ज्ञान के प्रयोग में स्व पर राग के साथ भिन्नता करते करते व्याप्त व्यापकता को ग्रहण करते वेद वेदकता को उसकी दिशा बदल जाएगी, उसकी दशा भी बदल जाएगी। मान है ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का भाव है, वही आत्मा है, वही परमात्मा, परमात्मा का साक्षात्कार ज्ञान से होता है।
सत्पुरुष को मूर्तिमान मोक्ष स्वरूप का, यहाँ पर ज्ञान को साक्षात मोक्ष स्वरूप का पहले किसको देखा है देखने का
प्रकट रूप पहले दिखेगा, मोटी बात पहले दिखती है, सूक्ष्म बात पीछे दिखती है, तो ये तो बहुत प्रकट है क्योंकि उनके तो दशा प्रकट है और दशा का कुछ अंश अपने वाणी में अपनी चेष्टा में आता है। प्रत्यक्षता स्वरूप प्रत्यक्षता कौन चीज है क्या चीज है वो उसकी वाणी में आती है, लिखने की चीज नहीं बोलने की चीज नहीं है, कुछ चेष्टा में आने वाली थी, ऐसा जो भाव भाव है वो नजर आता है। नजर अगर साफ है तो नजर आता है, प्रश्न करते थे कैसे नजर आए, कैसे नजर आते तो योग्यता से नजर आ, योग्यता कैसे पीछे लग जाते तो जिसको भीतर में ध्यान रखना, जिसको भीतर में अंतर्मुख कैसे होना, प्रत्यक्षता आत्मा की प्रत्यक्षता ज्ञान की प्रत्यक्षता क्या चीज है उसकी खोज वर्त भी है, ऐसी योग्यता वाले को मैंने जाएगा क्यों तुम्हारा प्रगट है। इसलिए एक दफे अगर पहचान लिया तो कहते हैं कि उसको पहले संकेत की प्राप्ति होगी, सबसे काम में तीन है उसको पहला ही कर देता है, दूसरा तो इसके साथ प्रतिबद्ध है, पहले संकेत के साथ कारण के साथ कार्य प्रतिबद्ध है, उसको आत्मा की पहचान होगी होगी और वो भी ज्ञान लक्षण से प्रसंवेदन लक्षण, और जिसको स्वरूप भगवान उसको तीसरा संकेत भी इसके साथ प्रतिबद्ध है, कारण के साथ कार्य का प्रतिबद्ध बना है और इसके साथ निर्वाण पद का भी प्रतिबद्ध बना है, जिसको संकेत होगा इसका मुख होगा होगा और पहले संकेत के साथ मोक्ष निर्माण है लगा हुआ है।
हमारा क्वेश्चन तो ये है पहले में से दूसरे में जल्दी से कैसे पहुंचे, पहले में से दूसरे में जल्दी से कैसे पहुंचे,
बस वो तो अपने को काम करना है, दूसरे को थोड़ा करना है, भीतर में अपना संवेद्यमान जो बने है वहां से होने का अपने हृदय से ही होगा, दूसरे से कोई होने वाला नहीं। यहां तो उसको मोक्ष स्वरूप का ऐसे स्वसंवेद्यमान है, ऐसा यह ज्ञान को ज्ञान गुण बिना मैंने अनुभव शक्ति बिना ज्ञान गुण माने क्या अनुभव शक्ति अनुभव करने की योग्यता। अनुभव तो कर ही रहे हैं लेकिन ज्ञान ज्ञान का अनुभव करे कोई ज्ञान गुण है कोई स्वभाव है ये आत्म स्वभाव है। इसके बिना अन्य किसी भी प्रकार से अन्य किसी भी विधि से अन्य किसी भी रीति से कोई जीव विश्व में इसकी प्राप्ति कर सकते नहीं। सारा कलश में ज्ञान ही साधन है ऐसा लिया
सर्वम